कहो हुआ है कना
भाई कुछ तो कहिए ना
कहो ना कहो
कुछ तो चाहो
बोलती है ओ सनम
कुछ कहिए ना
सनम
कुछ ते आखो
सफर में ए सहारा है
कोई गाल करो ना जी
साहलों का ये कनारा है
लखो ते हुआ है
कहो ना कहो
ओ कोशे ताखो
बोलती है ओ सनम
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज़ अज़ीज़। मेहमान हमारे ऐसे हैं कि उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, और चलिए उनमें से एक की झलक हम आपको सुनवाते हैं।
झुकनों से भर ले आ चल बीत जाए कहीं न ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल ओ कल जो होगा देख लेंगे कल
लोग इस वक्त एक सस्पेंस में होंगे कि कौन हमारा मेहमान है, ये जो गाने वाली फीमेल वॉइस है या मेल वॉइस है अली सफ़र की। लेकिन सामिन बता दूं कि बहुत ही वर्सटाइल शख्सियत हैं, प्रोफेसर अहमद अकील रूबी साहब हमारे मेहमान हैं। इन्होंने जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि गाना सुन के आपको अंदाज़ा होगा, बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं, फिर बहुत ही खूबसूरत नसर भी लिखते हैं और प्रोफेसर हैं। तो आपकी शख्सियत का वो कौन सा पहलू है जिस पर खुद आप बात करना चाहें?
देखिए, बात ये है कि बहुत कुछ लिखा, बहुत काम किया, सिर्फ इस उम्मीद पे ही काम किया कि कोई ना कोई कोई सदर कोई लफ्ज़ जो है लोगों की याददाश्त में महफूज रहे। मैंने नॉवल भी लिखे, शायरी भी की, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, तराजुम भी किए, उसके बाद खाके भी लिखे। अब मैं क्या 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 बताऊं कौन सी
मुझे बताए, तफसील बहुत ही लंबी है। पहले तो ये बताइए कि रूबी तखल्लुस है आपका।
हाँ जी, ये कोई इसके पीछे कोई पर्दे के पीछे कोई खास राज नहीं छुपा हुआ। मैट्रिक में जब फॉर्म पूर कर रहे थे हम तो सब लड़कों ने तखल्लुस लिखे, तो मेरा रियल नेम गुलाम हुसैन है। तो हमारे मास्टर एक थे दिल मोहम्मद फजा, उन्होंने कहा तुम सोच तखल्लुस रख लो, तो पूरा नाम जो मैं जिसपे तनख्वाहें लेता हूँ, जो असल नाम है जिसपे जन्म पत्री बनी, वो गुलाम हुसैन सोज।
अच्छा,
तो उसके बाद मुझे इस नाम में थोड़ा सा अजीब व गरीब लगा, तो फिर मैंने पूरा नाम अपना तब्दील किया, अहमद अकील रूबी।
अच्छा,
तो रूबी एक आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे।
जी जी जी,
मुझे उनकी लफ्ज साउंड बहुत अच्छी लगती थी रूबी, तो मैं जे का नुक्ता मिटा के मैंने रूबी लिख लिया। हालांकि उस वक्त तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये किस जुबान का लफ्ज है।
अच्छा,
और इसका मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कंबल की तरह चिपक गया मेरे साथ, तो बहुत सी किताबें लिख ली, 30-32 किताबें मैंने लिखी। तो मैंने कहा यार अब इसको क्या छोड़ना, तो बस ऐसा है। और इसका पस मंजर कोई नहीं जो दित भारती का था, वो
तो पहला बार तो आपने नाकाम बना दिया। मैंने सोचा कि शायद किसी खातून से मुतासर होके आपने रूबी, लेकिन आप तो आज़र रूबी साहब से मुतासर होके आपने रूबी लिखा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो शुरू कब हुआ लिखने लिखाने का ये कारोबार?
जी, मैं शायरी, मेरा ये पहली मोहब्बत मेरी शायरी ही है। तो बस मैं इब्तदा में एक कोशिश करते रहे एसए में, बीए में, तो एमए करके जब मैं लाहौर आया तो फिर मुझे नासिर कासमी मिले, कतील शिफाई मिले, अहमद नदीम कासमी मिले, इन सब की जूतियां सीधी की, इन सब के दर पे दस्तक दी, इन सब से रहनुमाई हासिल की, सुना इनको पढ़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि بی اے کے بعد بلکہ میٹرک کے بعد میں فلمی گیت لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا. تو میں آموں کی ایک ٹوکری ملتان سے لے کر قتیل شفائی کے پاس پہنچا.
اچھا.
تو قتیل صاحب نے کہا کہ یار یہ سب کچھ ٹھیک ہے تمہارا, لیکن یہ فلمی دنیا جاہلوں کا جنگل ہے, اس میں پڑھ لکھ کے آؤ گے تو بات بنے گی. میں نے فوراً کاپی پھاڑ دی اور ایسے میں داخلہ لیا, بی اے کیا, ایم اے کیا. تو قتیل صاحب کہا کرتے تھے کہ میری دو آدمیوں نے بات مانی ہے, میری اولاد نے میری بات نہیں مانی پڑھائی کے سلسلے میں, اس آدمی نے مانی. تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایورنیو اسٹوڈیو میں دو کمروں میں دو مختلف شاعر دو مختلف میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ گانے لکھ رہے تھے, ایک میں قتیل شفائی صاحب تھے اور دوسرے میں میں تھا. قتیل صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے کہا کہ یقین روبی تم نے میری بات مانی اور آج تم اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہو.
مجھے یہ بڑی اچھی سی بات لگی اور بڑی دانائی کی, کیونکہ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فلمی دنیا کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹس سے بہت نیچے کی بات ہے کسی اچھے رائٹر کی. تو قتیل شفائی صاحب نے جو بات کی, کیونکہ جب تک خود پڑھے لکھے لوگ وہاں نہیں جائیں گے تو آپ کیسے اس کا معیار بہتر بنائیں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ
اصل میں یہ شہناز یہاں بہت بحث چلتی ہے, انتظار صاحب کے ہاں بھی اکثر گفتگو ہوتی ہے, بلکہ آج ہی ہو رہی تھی, کہ لوگ ابتدا میں فلم لوگ جو نہیں جانتے انہیں نہیں پتا کہ پریم چند بھی فلم میں آئے, انہوں نے فلم کی کہانی دیکھی مزدور کی بلکہ اس میں ایکٹنگ دیکھی. خواجہ احمد عباس آئے, دنی آئے, سلطان مجرور سلطان پوری آئے, ساحر لدھیانوی آئے, اور اپنا راجندر کرشن آئے جو خالصتاً ان کے شاگرد تھے, احسان دانش کے یہاں ملاپ میں کام کرتے تھے, پھر وہ گئے وہاں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے علی سردار جعفری ہیں اور کیسی اعظمی صاحب ہیں, گلزار ہیں. تو گلزار اب آئے, لیکن یہ سب لوگ وہ تھے جو اپنی عظمت کے اپنی شاعری کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے.
بے شمار نام ہیں بالکل.
اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی کبھی فلمی گانے جو میں نے سنے, جن کو سن کے میں نے فلم میں قدم رکھنے کا تہیا کیا, ان گانوں کو آپ دیکھیے کیسا کیسا فلسفہ بیان کیا ہے کہ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے, افسوس ہم نہ ہوں گے. دنیا ہے موجے دریا, قطرے کی زندگی کیا, पानी में मिल के पानी अंजाम है कि फानी।
वाह, जो अभी सुना रहे थे तो मुझे बहुत पसंद है, और ये जो अली जफर की आवाज में है, और उसमें जो है कि कल जो होगा देख लेंगे कल, तो क्या ये आपका जिंदगी का फलसफा यही है वैसे?
नहीं, उसमें कुछ यही है कि जब आप गाना लिखते हैं तो एक सिचुएशन ओढ़ते हैं अपने आप पर, और ये गाना जब लिखा गया था तो ये रीमा और शान पर था, जो मोहब्बत के तो उस खास कैफियत में डूब कर
जुगनुओं से भर ले आंचल बीत जाए कहीं ना ये पल जुगनुओं से भर ले आंचल बीत जाए कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल कल जो होगा देख लेंगे कल जुगनुओं से भर दे आंचल बीत जाए कहीं ना ये पल कल जो होगा देख लेंगे कल हो कल जो होगा देख लेंगे
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/voaurdu।
जाहिर है कि जब उस जोन में हो आदमी तो फिर वो कहता है कि गालिब की तरह कहता है ना कि हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएंगे।
बिल्कुल,
देर से गर्दिश में है सात आसमान,
हो रहेगा
कुछ न कुछ घबरा।
अच्छा, प्रोग्राम में कॉलर्स आते हैं बड़ी दूर दूर से, मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से बहुत सी जगह ऐसी हैं आप कभी वहाँ शायद नहीं गए होंगे, मसलन वजीरिस्तान से और फाटा के और दूसरे इलाकों से, तो हम कुछ कॉल्स लेते हैं। हमारे पहले कॉलर वाना से फ़ोन कर रहे हैं और इनका नाम है इनामुल्ला वज़ीर। जी इनामुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, मैं अपने भाई साहब के अर्ज में सलाम पेश करता हूँ। क्या हाल है भाई साहब?
बिल्कुल ठीक भाई, आप सुनाइए कैसी तबीयत है, क्या हाल है आपका?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप वो फिल्मी दुनिया में जब से आए हैं, क्या आपने किसी को देखकर ये फिल्मी दुनिया में आप आए हैं, या मतलब बस वैसे शौक पड़ गया है?
ये मैं गाने सुनता रहा बहुत देर से, साहिल रुदयानवी के, शकील बदायूनी के, वो गाने सुन के थोड़ा सा मुझे शौक पैदा हुआ, और फिर मैं पढ़ लिख के थोड़ा सा जितना भी पढ़ा गया मुझसे, वो फिर सारा सामान लेके मैं आया कि बुरी बात नहीं कहनी, अच्छी बात कहनी है।
तो आपका सबसे पसंदीदा उस जमाने में कौन सा गाना था जिसे गुनगुनाते भी होंगे आप यकीनन? एक उम्र में सब बच्चे जो हैं उनको बड़ा शौक होता है फिल्मी गाने।
ये साहिर के, असल में साहिर ने बहुत इंस्पायर किया था, शकील बदायूनी और साहिर ने।
अच्छा,
तो बहुत विश्ववाद गीत थे, यानी हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो चाहे हमको करे ना याद, फिल्म दीदार थी, और फिर साहिर के पिघला है सोना नील गगन में, जाए तो जाए कहाँ, ठीक है ना?
हाँ, बड़े अच्छे अच्छे गाने आपने याद कराए उसे तो।
तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब पांचवी जमात में जाता था, 1947 का वाकया हुआ था, मैं और मेरी वालदा हिंदुस्तान से जब यहाँ आए, जमीन दूर आसमान चुप है ना, कुछ दाएं बाएं कुछ भी नहीं था। मैंने एक औरत को खाने वाले में एक नहर के किनारे कपड़े धोते हुए देखा, और वो रो रही थी और गाना गा रही थी, ऐ दिल तुझे कसम है तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजार।
मतलब इसका मतलब है जिंदगी में लोग सचमुच अपनी सिचुएशंस के लिहाज से गाने भी गाते हैं।
Yes, जब आप when you are thrown into a situation ना, तो फिर आप गुनगुनाते हैं वही गाना। तो मुझे इस गाने ने बड़ा हॉन्ट किया कि दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने शहनाज जो सोचा मुझे मिला जिंदगी में, मैंने कहा कि मैं गाने लिखूं, तो मैंने गाने लिखे। मैंने ये सोचा कि मैं लोग मेरे पीछे पीछे फिरे और मैं कहूँ कि यार नहीं वक्त नहीं, ये भी मुझ पर वक्त आया।
तो आप कहते हैं वक्त नहीं है, आप लगते हैं बहुत पोलाइट हैं, कहते नहीं होंगे शायद ऐसा।
जी हाँ बिल्कुल, ये नहीं छुप के निकल जाना। ये फिल्म चूड़ियां जब मेरी हिट हुई
जी,
तो एक गाना था उड़ कोठे उतो कावां वे, तो इस गाने ने हशर किया ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਥਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੂੰ। ਤੋ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਯਾਨੀ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕੀ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯੇ ਸ਼ਖਸ ਕਭੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਸੀ ਮੀ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਊਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਾਂ ਆਏ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੀਲ ਰੂਬੀ ਕੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸਕਾ ਘਰ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਮੇ, ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਸੀ ਮੀ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਜੋ ਬਸ ਏਕ ਬਾਤ ਥੀ, ਮੁਝੇ ਜਹਾਲਤ ਸੇ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਔਰ ਜਹਾਲਤ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਮੁਝਸੇ ਨਿਕਲੀ, ਵੋ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕੀਏ।
ਚਲੀਏ ਹਮ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਡਰਾਮੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਵੋ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਯਾ ਡਰਾਮੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਨਨੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਵੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸੀ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜਾਣਤੇ ਹੋਂਗੇ। ਤੋ ਹਮ ਲੋਕ ਕਾਲਰਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੋ 30 ਦਿਨ ਆਪਕਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਉਸ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਲੇਤੇ ਹੈ ਹਮ ਨਜਮਾ ਨੌਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ। ਜੀ ਨਜਮਾ,
ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਨਜਮਾ,
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਆਪ ਬਤਾਈਏ।
ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਿ ਯੇ ਇੱਕ
ਤਮਾਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
ہمارے پاکستان کا، لیکن میں کہوں گی کہ ایسے ہی لوک گیت جو ہیں وہ تخلیق پاتے، اگر آپ کو دکھ ہے خوشی ہے تو ایسے ایسے شاہکار ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں نا وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکے، تو ایسا کیا آپ نے کہ کتابیں، بچے جو ہیں ہماری نئی نسل خاص طور پر وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکی ہے، تو کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ کتابوں کی طرف لوٹ آئیں؟
جی جی میں کر رہا ہوں، جی میں کر رہا ہوں، ایک اخبار ہے آج کل، وہ منگل کو میں اس میں ایک صفحہ لکھتا ہوں، اور میں نے یورپ، امریکہ اور مغرب کے جتنے بڑے بڑے انگریزی کے ادیب ہیں ان سب کو انٹروڈیوس کرایا ہے اس میں۔ تو میں تو پڑھاتا رہا، 30 سال میں نے کالج میں پڑھایا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوا میں۔ تو میری تو خواہش یہی ہے کہ بچے، زوال ہمارے ہاں کلچر کو اس لیے آیا ہے کہ ایک تو کتاب سے ہم دور ہو گئے، ایک بزرگوں کی نشست سے ہم دور ہو گئے، اور ہم مادہ پرستی کی طرف زیادہ چلے گئے، اور وہ جو اقدار ہے زندگی کی سچی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ کتاب
جی
اور سینئر لوگوں کی گفتگو ہمیں زندگی کے راز و اسرار بتاتی ہے، اور ہم نے ان دونوں کا ساتھ چھوڑ۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی،
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اچھا آپ تو مجھے لگتا ہے بہت ہی ایک فرما بردار قسم کے شاگرد ہیں، کیونکہ آپ کو ناصر کاظمی نے جب یہ کہا، جنہیں آپ اپنا گرو سمجھتے ہیں، کہ بھائی جب آپ نے پہلی کتاب شائع کی 67 میں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، تو آپ بہت دنوں تک، آپ نے پھر کتنے سال تک نہیں لکھا کچھ بھی؟
30 سال نہیں لکھا یہ کتاب، حالانکہ اس پہ فلیپ ان کا تھا، ناصر کاظمی کا، احمد عظیم قاسمی کا، احسان دانش کا، तो जब किताब छप गई मुझे कहने लगे ये क्या है, मैंने कहा बकवास है, तो कच्ची फसल के अमरूद हैं, खट्टे खट्टे हैं, तो किताब फेंक दी। कहने लगे बस अब तुमने 20 साल बिल्कुल बात नहीं कर दी और तुमने सबमरीन की तरह समंदर के नीचे चले जाओ और पढ़ो। और 20 साल मैंने पढ़ा और 20 साल तक मैंने एक लफ्ज नहीं लिखा। 20 साल के बाद 1985 में मेरी 5 किताबें आई और अताउल हक कासमी ने कालम लिखा बाकायदा कि ये साल अचेल रोगी का है।
अच्छा,
तो मैं ये समझता हूँ कि जब गेम आप खेलते हैं तो उसके असूल और कवायद आपको पता होना चाहिए। अब हमारे यहाँ इंस्टेंट कॉफी यदि पॉपुलैरिटी के कायल हैं लोग, तो मैं समझता हूँ कि बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती और बगैर पढ़ाई के तख्लीक नहीं हो सकती।
बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कई दफ़ा ये एक पेचीदगी पैदा होती है कि जब आप बहुत पढ़ते हैं तो जैसा कि आपके साथ हुआ कि आपको ऐसा लगा कि आप उस पाए का नहीं लिख सकते, और होता ये है कि जब आप उस चीज़ को बहुत दिनों बाद पढ़ें तो फिर आपको ये लगता है कि जाहिर है जो आपकी उम्र थी और जो आपका तजर्बा था वो भी तो उतना ही अहम था, मतलब उस उम्र के का जो एक्सप्रेशन था वो वही था, और शायद अगर आप उसको उससे छपवाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, हमारी प्रोड्यूसर नीलोफर को भी आपका एक गीत बहुत पसंद है और वो कह रही हैं पहले इसको सुनवाते हैं, तो गीत सुनते हैं।
ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸਸੀਰ ਦਾ ਕਰਮ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
अच्छा, अब आप बताइए मुझे, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक जो नौमरी के तजुर्बात होते हैं और जो नौमरी का एक्सप्रेशन होता है वो अपनी जगह है।
नहीं, नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात कहने का सलीका भी तो होता है ना। एक तो ये है ना कि आप इश्क का इजहार करें, एक ये है कि आप झाड़ी पे दुपट्टा देख के इश्क शुरू कर दें। तो इसका अंदाज थोड़ा सा मेरे ख्याल नासिर काज़मी हमें ट्रेन करना चाहते थे कि ये तुमने इस उम्र तक की जो शायरी करनी थी वो कर ली, अब इस शायरी में एक पुख्तगी पैदा करो, और पुख्तगी जो है वो इल्म तालीम फलसफे के बगैर नहीं आ सकती। तो मेरे लिए वो बड़ा मुफीद हुआ, इसलिए कि हर अदीब को मैंने पढ़ा बहुत, यानी मैं दावा तो नहीं करता लेकिन काफी तालीम लिटरेचर को पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा बात करने का सलीका आया।
अच्छा,
चुनाचे अब जब बातें होती हैं तो मेरा ख्याल है कि दो चार आदमी कहते हैं यार ये तुमने बड़ी अच्छी बात की।
रात जा रही है, चांद ढल रहा है, धीरे धीरे आसमां रंग बदल रहा है,
बदल रहा है मेरे दिल की राह में पलकों की छांव में कोई मेरे साथ चल रहा है कौन चल रहा है पेड़ों पे काफले बहारों के करवटे बदलते हैं जिस्म रह गुजारों के ओंघते हैं पेड़ों पे काफले बहारों के करवटे बदलते हैं जिस्म रह गुजारों के सुरमई घटाओं में बदलियों की बाहों में हर तारा आंखें मल रहा है चांद ढल रहा है रात जा रही है चांद ढल रहा है धीरे धीरे आसमां रंग
मुझे बहुत फायदा
नहीं पढ़ने से तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पढ़ना लोग समझते हैं कि लिख लिया काफ़ी है लेकिन जब तक आप पढ़े नहीं तो कई दफ़ा आपको पता भी नहीं लगता कि आपके जो कुछ आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से
तो अभी आपने एक बात कही थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का नुकसान भी होता है असल में जो जिन लोगों को मैंने पढ़ा उन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया था कि देखो भाई किसी मिसरे पर और किसी फिक्रे पर इल्म का इतना बोझ न लाद देना कि जो मफहूम है उसकी जान निकल जाए ठीक है ना
हाँ दुरुस्त ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज कहा जो जान निकाल देते हैं ना लोग
कि वो फिर इल्म रह जाता है जो फन है शायरी है ये ऑस्कर वाइल्ड ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी उसने कहा कि जब मकसदियत जो है या इल्म इल्म की जो इल्म का बोझ जो है इल्म का गधा जब दाखिल होता है ना एक कमरे से तो फन की देवी दूसरे दरवाजे से बाहर चली जाती है
बिल्कुल दुरुस्त है चलिए हम अपने दो कॉलर्स को ले लेते हैं क्योंकि बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं वजीरिस्तान से अहमदुल्ला साहब जी अहमदुल्ला अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है शिनाजबा जी
बिल्कुल ठीक ठाक आप बताओ कैसे हैं
बस अल्हम्दुलिल्लाह
आप बात कीजिए अकील साहब से
जी मेरा एक सवाल आपसे और एक आपको एक बात कहना और एक सवाल मेहमान साहब से और सवाल ये है कि उसका फेवरेट सिंगर कौन है और आपको बात कहना ये है कि खुदा के लिए पैखान को प्रोग्राम में मौका दो पैखान सिंगर को
अच्छा जरूर
जरूर
जरूर हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि उनको लेकर आए और कौन सा है पसंदीदा आपका गाने वाला या गाने वाली
जी मुझे तो मोहम्मद रफी बहुत अच्छे लगते इसलिए कि वो हर किस्म का गाना गाने में कुदरत रखते थे गजल भी गा सकते थे कॉमेडी सॉन्ग भी तो यहाँ जहाँ यहाँ तक का ताल्लुक है पाकिस्तान में जाहिर है कि मेहदी हसन ने उनके मुझे मेरी दोस्ती भी रही उनका खाका भी मैंने लिखा उन जैसी आवाज भी कहाँ मिलेगी आपको ये जो बरखुरदार अभी गा के गए हैं अमीर अली जी करा में नजारा ये बहुत अच्छा और फिर ये जफर जो है अली जफर
जी जी पहला गाना
इनका ब्रेक थ्रू मेरे ही गाने से हुआ
अच्छा इसी गाने से जिन्होंने भी गाया था
हाँ हाँ अली जफर ने ये जो जुगनो भर ले दामन हाँ। जो होगा देख लेंगे दल ये अली जफर का पहला हिट सुपर सॉन्ग यानी गीत था ये तो
आप अपने एक पसंदीदा आर्टिस्ट को भूल रहे हैं अकील साहब जिन पे आपने एक बड़ी अच्छी सी किताब भी लिखी है यानी नुसरत फतेह अली खान
लिविंग
लेजेंड के नाम से आपने लिखा है उनके लिए
हाँ जी जी असल में वो ये इस चक्कर में आ गए ना फिल्म के
अच्छा
नुसरत फतेह अली खान मैंने किताब में भी लिखा है कि वो उसकी तो उंगलियां गाती थी لوگوں کے گلے گاتے ہیں, نصرت کی انگلیاں گاتی تھی, وہ انگلیوں سے سروں کو راستہ دکھاتا تھا.
تو انہوں نے کوئی آپ کا کلام گایا نصرت فتح علی خان؟
بالکل گایا.
کون سا؟
نصرت میں یعنی اتفاق کی بات ہے کہ پنجابی کا ہی تھا, سب ورد کرو اللہ اللہ.
اچھا.
وہ ایک 13-14 منٹ کی ہم تھی, اور اس کے بعد وطنن واجہ ڈھولنا, بہت خوبصورت گیت تھا یہ بھی پنجابی, کیونکہ وہ اکثر پنجابی ہی زیادہ گاتے تھے.
تو یہ جو ہے سب ورد کرو اللہ اللہ, کچھ یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا سا سنائیے ہمیں اگر یاد ہے تو.
سب ورد کرو اللہ اللہ, او دا ذکر کرو اللہ اللہ, جڑا سارے جگ دا والی ہے او دا ورد کرو اللہ اللہ. شارق تو نیڑے رہندا ہے, مینوں لبو ہر پل کہندا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو صورتیں, میں ان دنوں کوئی 30th پارا قرآن شریف کا ترجمہ کر رہا تھا, تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ قل ھو اللہ اور الحمد شریف اور یہ ان کی کچھ شعر بنا کے نا
جی جی
اس حمد میں ڈالے.
اچھا.
تو بلکہ ایک بہت تو عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے, یہ ایک حمد تھی اردو کی, بڑی اچھی انہوں نے گائی, لوک ورثہ کے لیے اکسی مفتی نے مجھ سے لکھوائی تھی, ایک بے نظیر کا شو تھا. تو یہ, لیکن میری دلچسپی یہ تھی کہ نصرت پر میں ایک ایسی کتاب لکھوں, گیت میرے وہ گائے, اس کی طرف میں نے زیادہ توجہ نہیں دی, دلچسپی تو تھی. تو نصرت نے مجھ سے کہا بھی یہ تھا کہ یہ جاپان میں ایک فکور کا اوارڈ ملتا ہے, تو نصرت کا نام 2-3 دفعہ وہاں گیا تھا, لیکن اس پہ ریٹن مٹیریل کوئی نہیں تھا نصرت پہ. تو اس سے پہلے سبرامینیم اور روی شنکر وغیرہ کو اوارڈ ملے, تو نصرت نے مجھے کہا کہ روی بھائی مجھ پر ایک کتاب ضرور بناؤ. تو پھر یہ میں نے 27 دن میں کتاب بنائی نصرت فتح علی خان پر, اور 27 دن میں ہی اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوا.
اچھا.
اور پھر یہ دس از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ بک آن نصرت فتح علی خان.
ویسے نصرت صاحب جو ہے بہت ہی اچھے انسان بھی تھے, نہ صرف یہ کہ وہ اچھے.
کیا کہنا,
تو کون سی چیز آپ کو, جب آپ ظاہر ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوگا کتاب کے حوالے سے خاص طور سے, تو کون سی ان کی بات بہت اچھی لگی آپ کو؟
نصرت ہی واز اے تھارو جینٹلمین. نصرت نے کبھی اپنے قریب آنے والے کسی آدمی کے کا دکھ درد سن کے اس کا ازالہ کیے بغیر اس نے کبھی سانس نہیں لی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس کی پارٹی امریکہ جا رہی تھی, لندن جا رہی تھی, تو ان کے ایک دوست تھے سفر, تو وہ لطیفہ وغیرہ بہت اچھے سناتے تھے, تو نصرت نے اسے خاص طور پر لے کے گئے وہاں کے, بھئی تو مجھے وہاں لطیفہ سنائے گا تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں. مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے مالی حالات مضبوط ہو جائیں. میں ایسے بے شمار افراد کو جانتا ہوں جو نصرت سے ہاتھ ملاتے تھے تو نوٹوں کی ایک چھتی ان کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی.
Thank you. ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ।
आदमी था, इतना पैसा उसने कमाया, खाना बिल्कुल वही पतले शोरबे में टोस्ट वो करके, कोई डॉक्टर ने मना किया हुआ था चिकनाई नहीं खानी। तो मैंने कहा कि खान साहब आप आराम करें, तो कहने लगे अगर मैंने आराम किया 13 के 13 आदमी सो जाएंगे।
अच्छा।
और जिनका घर चल रहा है, ये किताब बाद में शमा दिल्ली में अदरीस देहलवी साहब ने 13 महीने छापी और मुझसे कहा भी कि कुछ लेफ्ट ओवर इसका जो है वो भी हमें दो। तो फिर मैंने एक खाका भी लिखा था जो छोटी छोटी चीजें रह गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं जी, नुसरत ही वॉज ए अनशेकन रीड ऑन द बीच ऑफ मौसीकी। बड़ी उन्होंने बड़ी नुशाद साहब से भी बात हुई बॉम्बे में और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि इसके गाने हमने बड़े स्लो स्पीड में चलाकर देखे कि कहीं ये बेसुरा और बेताला होता है, तो नहीं बिल्कुल नहीं हुआ।
तो चलिए, खुशी की बात यह है कि आपने डॉक्यूमेंट कर दिया उनकी जिंदगी को, क्योंकि किताबें होनी बहुत जरूरी हैं। वो तो चले गए, लेकिन हम कॉलर्स ले लें, अपने 2-3 कॉलर्स और हैं सर हमारे साथ, एक साथ हम तीनों की सवाल ले लेते हैं फिर आपसे बातें करते रहेंगे। गुलागा गुलशन चित्राल से। जी गुलागा गुलशन, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पूछना चाहता हूँ किसान के मौजूदा हालात पर आपने कोई नगमा या शेर लिखी है तो इसका कोई वर्स हमें सुनाए।
मैं इसमें इजाफा बल्कि कर देती हूँ, कोई ड्रामा मौजूदा हालात पर। चलिए, पहले तो शायरी के बारे में चलिए हमने नोट कर लिया, अब हम दूसरे कॉलर हैं हमारे मुमताज अंजुम सरगोधा से। जी मुमताज अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी बाजी शनाज, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भैया।
गुजारिश है जी कि इंसान की हकीकी अजमत का जायजा इसके अमाल से लिया जा सकता है, किताबें लिखने का अमल हमेशा इनको जिंदा रखेगा। इनसे मैं सवाल करता हूँ कि जब भी आपसे इनसे कोई सवाल किया जाए तो किसी भी बात का जब ये जवाब दें तो उसमें ये यूनान का जिक्र ना करें।
किसका जिक्र ना करें?
यूनान का जिक्र, क्योंकि ये जब भी करते हैं ना तो
देखिए यूनान जो है बिल्कुल सही, वैसे इन्होंने कहा, इनका इन्होंने पहले कहा था कुछ देर पहले कि शायरी मेरा पहला फर्स्ट लव है, मेरा ख्याल है यूनान इनका फर्स्ट लव है। लेकिन चलिए हम एक सवाल,
जब इंटरव्यू सुनते हैं तो उसमें यूनान का जो भी बात की जाए यूनान का अक्सर जिक्र करते हैं, और जनाब सजाद हजरत साहब के बारे में भी कुछ फरमाए दीजिए।
अच्छा जरूर, असल में मैं इनकी तरफ से ये कह सकती हूँ कि जो इल्म अदब का गहवारा है उसका जिक्र किए बगैर ज़ाहिर है कि हमारा अदब जो है खुद मुकम्मल नहीं होता। लेकिन हम एक सेकंड में इनसे जवाब लेंगे, पहले तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर कोई अपना शेर सुनाइए।
जी मौजूदा शेर यही है कि अब नए साल के तेवर देखें, सात साल पिछला तो मुसीबत में कटा, यानी अब हमारी तो यही दुआ है कि यानी वो दरख्त जो एक बड़ी ही जरखेज मिट्टी और जरखेज ज़हन से निकला था उसकी शाखें टूटती जा रही हैं, पत्ते सूखते जा रहे हैं, लेकिन हम होपफुल हैं, अल्लाह के फजल करम से जड़े मजबूत हैं और पैविस्ता रहे शजर से उम्मीद बहादुर। जिनके जहनों में धुंध है, जिनके जहनों में एक अफरा तफरी है, एक दिन वो आएगा जब वो खुद शिकस्त खुर्दा होकर गिर जाएंगे। ठीक है,
चलिए आप तो बड़े जल्दी से रवानी में अपना जो शेर सुना गए, हमारे गुलागा गुलशन तो शायद सुन भी नहीं पाए होंगे। आप कोई और शेर सुनाइए, जरूरी नहीं कि वो पाकिस्तान के बारे में, अपना पसंदीदा, अपनी कोई पसंदीदा नज्म या गजल सुनाइए।
बिल्कुल, उसका मैं अभी अर्ज करता हूँ, मैं एक आपको छोटी सी गजल सुना देता हूँ।
जी जरूर।
शब का अंधेरा उन पलकों में सोया रहता है, शब का अंधेरा उन पलकों में सोया रहता है, सूरज उसको देख के आंखें मलता रहता है, कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है उस चेहरे में, कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है उस चेहरे में। मैं सुनता रहता हूँ ये दिल कहता रहता है, और दर्द की काई दिल आंगन में जमती रहती है।
दर्द की काई दिल आंगन में जलती रहती है जी।
दर्द की काई दिल आंगन में जमती रहती है, सांस का बालक इस काई पर चलता रहता है।
वाह बहुत खूब, बहुत खूबसूरत।
दिल आंगन में दर्द की काई जमती रहती है, सांस का बालक इस काई पर चलता रहता है, और लम्हा लम्हा सुख की पूंजी घटती रहती है, और लम्हा लम्हा खतरा सर से टलता रहता है।
वाह बहुत अच्छा।
मकता ये था कि सब रुखसत हो जाते हैं जब रात ढले रूबी, सब रुखसत हो जाते हैं जब शाम ढले रूबी, गम का एक पुराना खादिम बैठा रहता है।
वाह बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। अच्छा अकील साहब, ये यूनान के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था, लेकिन इससे पहले हम एक छोटी सी आईडी की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम आपसे जारी करें। एक सेकंड सिर्फ हमें आप दीजिए।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
जी अब आप बताइए, ऐसे मुझे ये इतराज नहीं है कि आपकी कोई बात यूनान के बगैर पूरी नहीं।
ये बहुत ये बहुत मशहूर बात है कि जब भी मैं किसी तकरीब में मज़मून पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह बख्शे अहमद नदीम कासमी साहब शदाब से कहने लगे कि बस ये अकील रूबी की बात शुरू हो गई यूनान से। वो प्यार में कहते थे।
हाँ जाहिर।
तो ऐसा है कि मैंने बहुत पढ़ा, और दूसरी बात ये है कि सेठ साहब की तलाक के लिए अर्ज है। एक दफा मुझे एक साहब ने कहा था कि यार अकील रूबी कभी यूनान से बाहर भी निकल।
हाँ।
तो मैंने उससे कहा था कि यार तू कभी अंदर आके तो देख।
शायद बाहर निकलने को दिल नहीं चाहेगा फिर।
हाँ दिल नहीं चाहेगा, इसलिए कि असल में बात यह है कि आप इल्म की कोई शाख ले लीजिए, फलसफे का कोई नुक्ता ले लीजिए, फन की कोई किस्म ले लीजिए, ड्रामा अफसाना नॉवल सारा कुछ, इसकी आपको जड़ें जाके यूनान ही में मिलती है।
अभी नापा ने आपका प्ले किया था, एडिपस रेक्स जो है उसको स्टेज किया था, तो आपने क्यों इस खेल का क्यों इंतखाब किया खास तौर पे स्टेज के?
ये शहनाज दुनिया का टॉप मोस्ट ट्रेजेडी है।
हाँ नहीं दुरुस्त, लेकिन
इतनी बड़ी ट्रेजेडी है
जी
के, और ये एमए में पढ़ाया जाता है और दुनिया का हर आदमी इसे बहुत शौक से पढ़ता है। इसकी सिचुएशन, इसका क्लाइमेक्स, इसका एंटी क्लाइमेक्स, इसकी करेक्टराइजेशन, इसकी किरदार निगारी इतनी मजबूत है कि दुनिया अभी तक ईडिपस रेक्स का जवाब नहीं लिख सकी। तो मुझे जिया मुहीद्दीन साहब ने मेरी किताब जब छपी यूनान का अदबी विरसा, तो जिया साहब ने मुझे कहा कि रूबी तुमने जो हिस्से कुछ किए हैं ईडिपस के मुझे बड़े पसंद है, इसका तर्जमा करो
जी।
तो फिर नापा के लिए मैंने दो ड्रामे किए, एक लीडिया सोफोक्लीज का, यूरिपिडीज का, और एक सोफोक्लीज का, ये किया।
तो आपको ट्रेजेडी ज्यादा पसंद है, इसका मतलब है?
इसलिए है कि दुनिया की कोई चीज निकली वहीं से, ट्रेजेडी वहीं से निकली है। ये जितने शेक्सपियर के कॉन्सेप्ट हैं, अब ये हेमलेट का जो ड्रामा है इसको अगर आप देखें तो ये सारे का सारा अस्काइलस के एगमेमनॉन से निकलता है। मैकबेथ जो है वो एगमेमनॉन की वहां से शुरू होती है जहां से वो शुरू होता है। तो यानी लिटरेचर, यानी मेरा ख्याल है कि किसी ने ये कहा था कि अभी तक हम होमर से बाहर नहीं आए। होमर के यहाँ जो अदब की जहतें पाई जाती थी वही चल रही हैं हमारे, यानी इज़रा पॉन्ड ने कहा कि होमर इज माई डेस्टिनेशन, और हॉरेस ने कहा कि यू मस्ट स्पेंड योर नाइट संडे विद होमर।
तो आपने जब स्टेज पे देखा अपना प्ले, तो मतलब आपके ख्याल में इस सतह के ड्रामों के लिए ऑडियंस मौजूद है हमारे यहाँ ऐसी स्टेज के स्टेज पर?
ऑडियंस 2-4% तो निकली आती है ना
जी।
अब नापा में जितने लोग आ गए उतने तो थे ना, और फिर ये है कि इस तरह तो शहनाज ये होगा कि अच्छी चीजें रद्द होती जाएंगी।
नहीं मेरा तो इसके बरक्स है, मेरा ख्याल है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ लेवल्स पे, क्योंकि हमारा कैरिकुलम जो है स्कूलों में अब इतना रोज बरोज उसे बदलते जा रहे हैं कि आपके पास जो क्लासिक्स हैं उनकी गुंजाइश ही लगता है बिल्कुल नहीं बची है।
जी, बिल्कुल नहीं। ये मैं मेरी अभी किताब आ रही है दूसरा जन्म, ये कोई मैंने 150 नज़्म अंग्रेजी की जो है ना उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया है।
अच्छा,
तो उसमें शेले, बायरन कीट्स, विलियम ब्लैक और लॉन्ग फेलो ये सारे लोग हैं। तो मेरे दिन में भी यही बात थी कि थोड़ा सा करीब तो आए इसके। अभी ये सेठ साहब सज्जाद हैदर मलिक की बात कर रहे थे, तो सज्जाद हैदर ने मेरा एक ड्रामा ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, का नाम है टेल ऑफ ए सिटी। लंबी तवील नज्म है, कहानी एक शहर की, बस इस तरह ही है।
तो कौन सी शहर की कहानी है ये आपकी?
कराची की है ये।
अच्छा,
बल्कि उसके दिवाचे में लिखा था इंतजार उसे, उसने अनीस तागी ने, कि ये दुनिया के हर उस शहर की कहानी है जो तीसरी दुनिया के दरमियान आखिरी सांसें ले रहा है। तो ये तीसरी दुनिया के जितने लोग हैं उन सब के शहर उस शहर में सुवाए हुए हैं, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन कराची से मिली थी जहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, जहाँ का सुकून फना हो गया है, जहाँ के लोग घरों से नहीं निकलते सिर्फ इसलिए कि कहीं टिक लिस्ट पर उन्हीं का नाम क्यों ना हो। बल्कि इस सिलसिले में मैं अपने दो चार शेर सुनाता हूँ।
हाँ जरूर, और खासतौर पे आज के दिन।
अपनी इज्जत का तहफ्फुज है यहाँ रुसवाई, हम जहाँ हैं वहाँ जिल्लत की अमलदारी है। जर्रे जर्रे में है पिनहा कोई शमशीर बकफ, सांस लेने में बहुत खौफ है दुश्वारी है। जगमगाती हुई राहों से गुजर हो जब भी, खौफ तश्की गुमा वहम नजर आते हैं, देख कर जबर के हाथों पे लहू के छींटे, जिंदा रहने के सभी हौसले मर जाते हैं। सुबह होती है तो खुलता है दरे जुर्म सजा, एड़ियां बजती हैं झनकार का मुंह सिलता है, रुखे अखबार दिखाता है शबो रूज का अक्स, कत्लो गारत के तसव्वुर से जिगर हिलता है। यही है बस इस किस्म का।
तो अकील साहब, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, अब शहरों की बात हुई है, कि एक जमाना था कि शहर जुड़े हुए थे, गांव शहर सारे पाकिस्तान में लोग महसूस, हर जगह का गम जो है ना अपना गम समझ के महसूस करते थे। रोज परोज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक हदें खींच रहे हैं लोग कि ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, ये अगर उस शहर में कुछ होता है तो ये इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, मतलब अजनबियों की तरह वो उस पर तनकीद करते हैं बजाय इसके कि एक मोहब्बत करने वाले की तरह उस पर करें। आपको लगती है ये बात कि शहर रोज बरोज अजनबियत बढ़ रही है?
बिल्कुल, आदमी 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 से दूर होता जा रहा है। हमें आदमी तो बहुत, इस आदमियों के जंगल में इंसान बहुत कम नजर आते हैं, और इंसान वही है जो एक दूसरे का दुख महसूस करे, और हमने ये करना छोड़ दिया है। और तो इस तरह वो एक हम अपनी जात में घिर के रह गए हैं, और जब तक ये एहसास नहीं हुआ, तो मेरी एक नज्म थी जो मोहम्मद अली अक्सर बाहर जब जाते थे अमेरिका, लंदन, जापान, तो भी अक्सर सुनाया करते थे लोगों को।
आप हमें सुनाइए।
जिंदगी अपने लिए जीना कोई बात नहीं, ऐसा दरिया जो जड़ें अपनी सैराब करे, एक सहरा की तरह खुश्क है और तन्हा है। और दोस्तों, जिंदगी एक नेमत रब्बानी है, आओ इस नेमत रब्बानी की ताजीम करें, थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें।
वाह, बहुत खूबसूरत।
तो ये औरों में तकसीम करने का जज्बा खत्म हो गया है, तो जब हमने अपने खैरात देना बंद कर दी, जज्बाती खैरात, तो बस फिर हम अपने अंदर ही सांस ले रहे हैं। दूसरी दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं। मुझे वॉल्टेयर की एक लाइन याद आ रही है, उसका एक ड्रामा था जार्डिक, उसमें वो ये कहता है कि मैंने जरा सा ऊपर उठ के देखा इंसानों की बस्ती पर, बस्ती को, तो मुझे ये घर नजर नहीं आए, ये मुझे चूहों के बिल नजर आए हैं। छोटे चूहे हैं हम सब,
जी, जी, जी,
और ये बिलों में घुसे हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि साथ वाले बिल में क्या हादसा हो गया। तो बिल्कुल उसकी सच्ची बात थी।
अच्छा, आपका जो ड्रामा था वो 30 दिन, ये बहुत मकबूल हुआ, बहुत लंबा, कितनी 350 किस्तें इसकी नशर हुई थी?
नहीं नहीं, वो उसकी 30 थी, ये वो मेहंदी वाला हाथ, मेहंदी वाला।
अच्छा, 350 किस्तें। तो आपने मेहंदी वाले हाथ, एक फिल्म के गाने भी लिखे मेहंदी वाले हाथ, और फिर ड्रामा भी लिखा,
बड़े अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने,
बहुत अच्छे। तो हम चलिए आपका एक गाने सुन लें पहले, इससे पहले कि आगे जाए मुख्तसर एक झलक। कॉलेज को लेते हैं, शौकत अली अंजुम हमारे साथ हैं डारा वाले से। जी शौकत अली अंजुम साहब,
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
जी वालेकुम सलाम भाई।
मैडम मैं आपका आज बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे बहुत पसंदीदा हस्ती को यहाँ लाया, क्योंकि ये प्रोफेसर गुलाम हुसैन सोज अहमद अनवर अकीर रूबी साहब मेरे उस्ताद हैं कॉलेज के।
अच्छा,
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखुपुर में पढ़ा करता था, तो ये हमें 79-80 में पढ़ाया करते थे। तो इनके ये किसने कहा, राधे हस्ती गैरतमंद जवानों से शेर का एक दिन बेहतर है गीदड़ के 100 सालों से। तो ग्राम सरवर साहब और बहुत से उस्ताद हमारे हुआ करते थे, तो इनसे अब मैं खड़ा होकर सुन रहा हूँ ये इनका प्रोग्राम।
अच्छा, देखिए कितने अच्छे आपके शागिर्द मौजूद। अच्छा शौकत साहब कैसे थे ये बताइए हमें, उस्ताद कैसे थे अकील साहब?
मैडम बहुत नाइस उस्ताद थे। इन नाबीनों के, इनको याद नहीं शायद मुझे, मैं इनको थोड़ा सा, 3 नाबीने पढ़ा करते गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शेखुपुरा में।
जी जी जी,
एक होते थे आबिद साहब, याद है सर? तो एक अब्दुर्रहमान हुआ करते, शौकत अली अंजुम हुआ करता था आपका अदना सा शागिर्द।
तो मैडम ये बिल्कुल ठीक है।
जी जी, तो मैडम ये बहुत नाइस उस्ताद है हमारे, और इस अब उनकी वजह से आज मैं एमए करके एसएससी टीचर लगा हूँ। तो इनको ये खबर सुनाना चाहता हूँ कि सर आपकी दुआओं का नतीजा है, जिसकी वजह से मैं मुजफ्फरपुर अल्लाह के फजल से बैग नहीं कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि बाइज्जत रोजी कमा रहा हूँ। तो सर मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी।
तो शौकत, बहुत खुशी की बात है अकील साहब, अगर एक शागिर्द भी किसी का खड़े होकर ये कह रहा हो और कि वो आपकी वजह से आज इस मकाम पहुँचा। हमारे शौकत साहब जो है नाबीना है, और जाहिर है कि इनको हौसला अफजाई जरूर आप जैसे उस्तादों की तरफ से मिली होगी, तो ये जिंदगी में आगे।
ये बहुत ही पसंदीदा लोगों में से, शागिर्दों में से थे, बल्कि मैंने वहाँ एक म्यूजिक क्लब बनाई थी, ये शौकत और आबिद उसमें शामिल थे और साथ बैठकर गीत गाता था।
अच्छा,
और चूड़ गाने में इनका एक वो हुआ करता था जो इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ से ये पढ़ने आते थे, एंड आई यूज टू गिव देम द फुलेस्ट attention of my personality.
तो बताइए अगर आपका कोई शागिर्द अब ये कहे इस जमाने में, यानी कि वो खड़े हो के आपका प्रोग्राम सुन रहे, ये तो बड़ी रिवायती सी एक अदब आदाब की बात है। तो मैं कहती हूँ आप बहुत खुश नसीब उस्ताद हैं। अच्छा, हम आखिरी कॉलर को ले रहे हैं, मुजफ्फराबाद से कुरबान हुसैन।
बात दरअसल ये है कि अब मैं जो ना लोगों को बुलाया, इन्हीं का दिए हुआ सबक है
जी,
अब मैंने एसोसिएशन बनाई हुई, इन्हीं के दिए हुए सबक से बनाई है।
बस बहुत खुश कर दिया आपने इस वक्त अकील साहब को, और साहब उनको मुझे यकीन है बहुत, एक उस्ताद के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अच्छा, मुजफ्फराबाद से कुरबान हुसैन साहब। जी कुरबान साहब, जी वालेकुम सलाम कुरबान साहब।
जी मैं मुजफ्फरगढ़ से कुरबान हुसैन बात कर रहा हूँ।
जी जी भाई,
और मेरा मेहमान साहब को सलाम, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा एक शेर आज के हालात के मुताबिक एक शेर सुनना चाहूँगा और एक कहना चाहूँगा।
अच्छा, पहले आप कह दीजिए।
मेरे घर में आग लगी है, हर कोई तमाम दोस्तों को सलाम है।
जी जी शुक्रिया, थोड़ा सा फोन कट रहा था आपका, तो शायद हमें पूरी आवाज़ नहीं आई। जी अब आप अकील साहब अगर इनको सुना दें शेर अपना।
मैं सुनाता हूँ शेर, एक ऐसे शेर जो मेरे एक डीआईजी दोस्त ने अपने दफ्तर में लगाया हुआ है।
अच्छा,
मुझे उन्होंने पूछा था कि जिंदगी का आपका फलसफा क्या है, मैंने कहा मेरा फलसफा एक ही है कि अनसुनी कर दे तो हर बात को उसकी रूबी, तेरा दुश्मन तेरी इस बात से मर जाएगा।
वाह, लेकिन आसान काम नहीं है ये, आप अमल कर सक कर पाते हैं इसके ऊपर?
अरे मैंने किया।
अच्छा,
आप यकीन कीजिए कि 30 साल की सर्विस में मैंने कभी किसी की बात को जो मेरे खिलाफ थी उसको सुना ही नहीं।
अच्छा।
और मैं अपने काम करता रहा। यही वजह है कि मैंने बेशुमार गाने लिखे, बेशुमार किताबें लिखी, बेशुमार बच्चों के गीत लिखे और तर्जमे किए, यानी फिल्मों के गाने लिखे, खाके लिखे, बायोग्राफीज लिखी, नॉवल लिखे, कुरान शरीफ के 30वें पारे का तर्जमा किया। तो ये बस अगर आप लोगों की बातों का जवाब दें, अगर फकीर जो है कुत्तों को हटाता रहे तो उसे हटाती ना मिले।
लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप जब मसलन कोई भी आपकी हम ले लें ग्रीक ट्रेजेडी जिस पर आपने काम किया, उससे जब आपका होता है मुंतकिल होते हैं आप किसी फिल्म चूड़ियाँ के गाने तक, तो कैसे मतलब ये आपका जहनी जो अमल है आसान है? ये
स्विच ओवर होने वाली बात है। यानी आपको टेलीविजन की ताकत होनी चाहिए कि पंजाबी चैनल चल रहा है, उसके बाद नेशनल ज्योग्राफी आ गया, उसके बाद आप CNN पे चले गए हैं, BBC पे चले गए हैं। मैंने अपने आप को टोन किया हुआ है, अपने जहन में एक ऐसा ने वो रखा हुआ है, यानी रिवोल्ट
जी,
कि मैं जब चाहूं जिस तरफ चला जाऊं, कभी मैं फिल्म के गाने लिख लेता हूं, मुझे तकलीफ नहीं होती। अजीबो गरीब बात थी। उसकी वजह ये है कि मेरे जहन में ये बात थी कि इंसान मट्टी से बनाए और मट्टी से हर फसल उगाई जा सकती है, सिर्फ किसान जो है वो जरा बाश होना चाहिए। तो मैंने अपने आप को टोन कर लिया और मैं हर स्टेशन को कैच कर लिया।
ये खुद एक बड़े कमाल की बात है वैसे ऐसा होना। अच्छा, कोई ऐसा सुनाइए आखिर में हमें, कोई भी ऐसा इक्तिबास जिसको आपने अपनी जिंदगी के लिए एक रहनुमाई का काम लिया हो, जिस कॉल से
रहनुमाई। शनज, इस तरह है कि रहनुमाई, बुक्स आर माई बेस्ट टीचर।
जी हाँ,
आप हैरान होंगी कि मैंने इसलाह किसी से नहीं ली अपने शेर पर। मैंने हमेशा, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैंने दोस्तियां सबसे पाली, यानी अशफाक साहब, इंतजार हुसैन साहब, नासिर काजमी साहब, ये मैं गुरु समझता हूँ इन्हें, अपने कतील शिफाई हैं। उसके बाद मुमताज मुफ्ती थे, तो ये सारे लोग जो हैं इनसे बड़ी रहनुमाई हासिल की
जी,
और जिंदगी के सबक किताब से सीखे। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके माथे पर लिखा हुआ था, अंग्रेजी की एक किताब थी, कि लेट अस लर्न द लेसंस ऑफ लाइफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ डेथ। तो उसकी मुराद ये थी कि ये जो ये जिंदा लोग पढ़े हुए हैं लाइब्रेरीज में, इनकी किताबें देखिए, कभी बोकिचियो मेरे काम आया, कभी दांते काम आया, कभी दोस्तोयेव्स्की काम आया, कभी टॉलस्टॉय से कुछ हासिल किया, कभी विक्टर ह्यूगो से, कभी हरमन मेलविल से, कभी विलियम फॉकनर से, और ये सारे दे आर ऑल माई फ्रेंड्स। और इन सब पर मैंने लिखा है। नेशनल बुक फाउंडेशन से मेरी किताब आ रही है, अदब और इल्म के मेमार, उसमें मैंने 75-80 आदमी लिए हैं, यूरोप के, वेस्ट के, अमेरिका के।
तो मैंने शुरू में जो बात कही थी, अब हमारे प्रोग्राम में सिर्फ चंद सेकंड बाकी हैं और आपसे बातें बहुत सी बाकी हैं, तो चलिए आइंदा सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद अकील रूबी साहब हमारे इस प्रोग्राम में आने का। और आपको सामिन बताते चलूँ कि हमारी प्रोड्यूसर नीलोफर थी और हमारे इंजीनियर जस्टिन क्वेट्स थे और मेहमान हमारे थे प्रोफेसर अहमद अकील रूबी साहब। इजाज़त दीजिए शहनाज अज़ीज़ की जानिब से, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
सीधा एक तंग लेड़े दर्जी।